Market Mantra. Hello, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You may connect with us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I'm Sarabjit Kaur, and with me is my co-anchor Harsh Ranjan. Hello, Harsh.
Hello, namaskar. Hazir hai Market Mantra ke ek aur taaza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadte utarte graph par, baat karenge gharelu stock market ki. Aur aaj ka din shanivar ka hai, aur aaj ke din श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके कॉल्स को आमंत्रित करते हैं. तीन टेलीफोन नंबर्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2331-44-44, 2342-1050 और 2331-0464. तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली मौजूद हैं. शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद हर्ष. थैंक यू सो मच सरबजीत, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश.
यस हर्ष, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स टॉक्स विद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, सेज इंडिया एंड इंडोनेशिया टू एनहांस कोऑपरेशन इन साइबर सेफ्टी, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड डी रेडिकलाइजेशन. World Economic Forum at Davos calls for increased cooperation in the face of global challenges and uncertainty, and domestic markets record a significant downturn for the third consecutive week.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बात की, कहा भारत और इंडोनेशिया साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग बढ़ाएंगे. दावोस में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितता के मद्देनजर सहयोग बढ़ाने का किया आह्वान, और घरेलू बाजारों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. सबसे पहले आज की बड़ी खबर लेते हैं. भारत और इंडोनेशिया ने आज स्वास्थ्य सहयोग, परंपरागत चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए. तीसरे भारत इंडोनेशिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि 2018 में अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया. श्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में मिलकर काम करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरता से निपटने में सहयोग पर भी जोर दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है.
And Harsh, I believe Satish Chandra from Delhi has already connected with us. Satish, put your question, please.
Good evening to you all, sir.
Good evening.
My first question is whether we can purchase this sovereign gold bond still, and what is this sovereign gold bond 27-28, whether it's a maturity. And second question is, earlier also I have spoken about this Investor Education Fund. It is more than 1 year. I could not get my shares. Every time they said, I visited their office also. And third small question is about Trump. How market will go down still further because of Trump only, or there are some other reasons? Thank you very much.
Okay, Satish ji, a lot of questions at one go. Your first question was about sovereign gold bonds. Yeah, we haven't seen an issue for the last few months. And As of now, if you ask me, I'm not really expecting an issue to be coming very soon. I can tell you the reason, because the imports, every sovereign gold bond has to be backed by underlying gold deposit. So I think the imports of gold had shot up. An estimate says that Indians hold more than 25,000 tons of gold, you know, amongst all of us.
Right.
So I think that puts a pressure on the exchequer. So I think sovereign gold bonds as of now are on hold. Your question was regarding maturity. 8 years, Satish ji, is the maturity time in which you have to complete the tenure. You must be knowing there's 2.5% interest given, and the long-term capital gains are exempt. Your other question was about IEF. You've asked that question many times, I remember. I'm not feeling very good that you have not been able to, you know, encash or retrieve your shares. Well, the only way out right now is to just keep follow-up with them, and there's nothing much that we can do as a platform. We are basically an advisory platform. We help the listeners understand as to the concepts of economics, business, finance, and stock markets. As regards Trump, I think the markets are reacting to some of the initial declarations made by President Trump. Things will settle down. There are initial reactions. I'm sure a reality check of all the declarations is going to come soon. And you will soon see markets settling down, hopefully. But although I do anticipate the market to remain volatile this year, the volatility will be high. Budget is coming, which is something very nice for the market. So we hope some positive announcements are there, which will boost the sentiment in the market.
That's right. Our next caller, Rakesh from Janakpuri. Rakesh ji, apna sawal poochiye.
Hello, Rakesh ji. Rakesh ji, aapko awaaz aa rahi hai? Rakesh ji ke saath abhi sampark nahi ho pa raha hai. Shivani ke paas chalna padega. Shivani hamare saath Delhi se judi hui hai. Shivani, are you there? Shivani, aap sun pa rahi hai hame?
Harsh, meanwhile, moving further in the program, let's take up the next news headlines. The World Economic Forum, WEF, at Davos concluded its annual meeting calling for increased cooperation in the face of global challenges and uncertainty. In closing remarks, WEF President Borj Brin said they realized during this week that they came together in Davos at the time of immense consequence and uncertainty when political, geopolitical and macroeconomic landscape all are shifting under the feet. He emphasized critical political priorities such as driving economic growth, reducing carbon emissions, and finding ways to end conflicts need urgent attention. During the Economic Outlook session, International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva highlighted that the evolving geopolitical landscape will reshape trade and economic relations. Nearly 3,000 participants from various regions and industries convened in Davos to address key global and regional challenges. They include responding to geopolitical shocks, stimulating growth to improve living standards, and advancing a just and inclusive energy transition. Sharaji, we now have Gautam from Delhi, our next caller. Gautam ji, apna sawal poochiye.
Thank you, ma'am. Thank you very much. Good evening to everyone.
Good evening.
Sir, namaste. Namaste. A question hai. हमारी इनकम के चार पार्ट कंजम्पशन मतलब खर्चा जो हम बिल यूज में करें इन्वेस्टमेंट जो कि ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है टैक्स और सेविंग्स सेविंग्स मींस जो मूलधन कभी आपका डाउन नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट के विपरीत ठीक है एग्जम्पशन सॉरी टैक्स बढ़ता है इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है लेकिन जो ये सेविंग वाला पार्ट है जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली पीपीएफ या ईपीएफ जैसी चीजें इनकी लिमिट 1.5 लाख है काफी सालों से बहुत सालों से मेरे ख्याल शायद 12 साल से ऊपर होगा
जी
तो ये इसकी लिमिट क्यों नहीं बढ़ रही जब मेरी 3 लाख इनकम थी तब भी मैं 1.5 लाख सेव करता था आज मेरी 10 गुनी है तब भी मैं उतना सेव कर पा रहा हूँ तो मुझे सेव करने का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा ये पॉइंट है जो कि दिमाग में आया तो प्लीज पूछा
जी, जी.
मतलब बजट में कुछ उम्मीद है इस बार
देखिए देखिए गौतम जो ये आपने पीपीएफ की बात करी पीपीएफ की 1.5 लाख लिमिट होती है सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको इसका डिडक्शन मिलता है जब से गौतम न्यू रजीम आई है टैक्स की जो नया सिस्टम है उसमें सरकार की मंशा ये थी कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए जो इतनी सारी चैप्टर 6A की डिडक्शन है ATC ATD ATE ATGG वगैरह वगैरह बहुत लंबी फेरिस्ट है इनकी HRA होता है हाउसिंग लोन होता है तो एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर तो एक ऑप्शन दे दी गई टैक्स पेयर को कि आप चाहें तो आप न्यू टैक्स रिजीम में आ सकते हैं आप चाहें तो ओल्ड में रह सकते हैं इसी वजह से गौतम क्योंकि सरकार चाहती है और आपको पता होगा 2/3 लोग न्यू रिजीम में आ भी चुके हैं, शायद इस बजट अनाउंसमेंट में न्यू रिजीम को और ज्यादा लुभावना बनाया जाए जिससे ज्यादा लोग एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में आ सके। पर गौतम मैं एक जरूरी बात ये बोलना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको कारण बताया कि क्यों वो लिमिट वहीं पर अटकी हुई है, पर मैं ये मानता हूं कि सेविंग एक अच्छी आदत है और हम लोग टैक्स से सेविंग को लिंक करके चलते हैं। ये बात सच है कि हमारे जो पुराने जिन्होंने करियर शुरू किया था उनसे जबरदस्ती जनवरी मार्च में जल्दी जल्दी सेविंग करो भाई टैक्स लग जाएगा टीडीएस कट जाएगा। मुझे लगता है सेविंग और टैक्स को डी लिंक करने जाए, सेविंग एक अच्छी आदत है, टैक्स लगे बचे या ना बचे आपको सेविंग फिर भी करते रहने चाहिए। ये पीपीएफ एनएससी इंश्योरेंस ये सब आपके एक तरह से सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट कर देते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं गौतम, आखिरी बात बोलूंगा, जिन्होंने उस समय जबरदस्ती ये सेविंग करी थी टैक्स बचाने के लिए, आज वो दुआ देते हैं उन एजेंट्स को या उन सलाहकारों को क्योंकि उनके पास एक एक दो दो करोड़ रुपया कलेक्ट हो गया है, उनकी बुढ़ापे की लाठी बन चुका है। तो मैं समझता हूं कि सेविंग एक अच्छी आदत है गौतम, आप टैक्स डिडक्शन नहीं भी मिलती है आप फिर भी सेविंग करिए। ये बात सच है, आप कह सकते हैं कि भाई पैसा उतना बचता नहीं है, जितना भी बचता है आप उससे सेविंग जरूर करिए भले ही टैक्स डिडक्शन मिले या ना मिले।
इंडीड शरद, दैट्स अ वेरी नॉवल वे ऑफ लुकिंग एट यू नो डीलिंकिंग इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेशन। एंड नाउ वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर अतानु साहा फ्रॉम कोलकाता।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी लर्न इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेनली कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनसाइड आवर फाइनेंशियल बजट। थैंक यू वेरी मच।
How do you learn capital and revenue expenditure? Atanu sahab, I think your question is related to a concept of accounting. I think capital expenditure is one which gives a long-term benefit, where, and if I put it down in very hardcore accounting language, a capital expenditure is one where the benefit of the expenditure extends to beyond 1 year. Which is like when you buy an asset, suppose aap gaadi lete hain, or you buy a piece of machinery. The machinery is going to last for 5 years. Your car is going to last for, let's say, 7 years, eight years. That is a capital expenditure where the impact of expenditure finishes in a year.
Yeah.
That's called a revenue expenditure. So I hope I have explained you taking support of the principles of accounting as to what is. I'm sure Mr. Tanu must be in some business he wants to, and there must be a situation where he's not able to make out if this is a capital expenditure or a revenue expenditure. We can expand on that if you haven't understood next time, Tanu sahab, but I have principally explained you what does it mean.
Coming back to Delhi, Pritam ji, apna sawal poochiye.
Namaskar madam.
Namaskar. Apni
team ko. Namaskar. Sir, mera thoda sa sawal ye hai, jaise ki Trump sahab aaye hain, unhone kuch taabod taur kuch faisle liye hain, jaise ki aapne yahan kuch samaan mangla, kya aapko samaan aata hai, to 76% ke aaspas ka tax ye ये कराड़े पे लगाने वाले, तो ये कुछ सामान मंगाते भी हैं तो वो भी कुछ हो सकता है टैरिफ बढ़ाए अपना, तो इनके यहाँ पे कुछ महंगाई होगी देश की बात है, तो क्या वहाँ के इकोनॉमी पर पड़ेगा, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ेगा?
प्रीतम जी, पहले तो आपसे मैं अपने माननीय दोनों एंकर्स की तरफ से और खुद भी प्रार्थना करूंगा अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम आप डाउन करें क्योंकि आप हमें दो दो बार सुनाई दे रहे हैं, आवाज इको करती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ट्रंप साहब टैरिफ वर्ड हमें बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कुछ दिनों से, और ये सच है कि अगर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं तो अमेरिका में तो सब कुछ बनता नहीं है, तो अगर सब कुछ बाहर से आएगा और उस पर टैरिफ लगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। एक अंग्रेजी में शब्द होता है प्रीतम जिसको हम कहते हैं रियलिटी चेक, और उसका मतलब ये होता है कि जब आप कुछ घोषणा करते हैं पर जब आप उसकी असलियत में जाते हैं उसकी तह में जाते हैं तो आपको सिचुएशन थोड़ी सी बदली बदली सी नजर आती है। तो आप जो बात कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं आपकी आवाज डोनाल्ड ट्रंप साहब तक भी पहुंचे और वो भी इस बात का संज्ञान लें कि ये बहुत ज्यादा टैरिफ वो लगाएंगे, पर मुझे लगता है कि वो अभी थोड़ा सा एक पॉस्चरिंग होती है, पॉस्चरिंग कर रहे हैं, असल में कितने टैरिफ लगते हैं ये समय बताएगा। बाकी ये ट्रंप साहब की अंदर की बात है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाने, हम तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टॉक मार्केट्स की सलाह दे सकते हैं।
एब्सोल्युटली, लेट्स सी व्हाट द नियर फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। गोइंग स्ट्रेट टू मुंबई, विनायक जी अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक कंपनीज डिक्लेयर एनुअल रिपोर्ट और यू नो क्वार्टरली रिपोर्ट
जी,
एंड वी सी दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज आइदर गो अप और गो डाउन
जी
विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर।
या
आई जस्ट वांट टू नो वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन the result which is declared and the share prices of the company.
Oh, I see. Oh, I think Mr. Vinayak wants to know that whether the results declared are true or not true. Vinayak ji, I must tell you that when annual results are declared, they are audited. So when it's audited, and the stock exchanges have very, very strict guidelines on reporting by the listed companies. So I really don't think that any company can dare to probably cook up the numbers and present the numbers where there is no truth in that, or which are probably away from reality. So you can be rest assured that there is adequate regulatory mechanism in place by SEBI and by stock exchanges where the companies cannot do any kind of dressing in their financials. So you can trust those financials. You know where this question comes from. Sometimes what happens when the results come of a company, this is interesting and maybe useful for all listeners.
That's right.
And the results are positive, 30%, 40% PA growth and so, and the stock starts falling. So the reason is because market anticipates in advance. So sometime when the results come, the market fall, that is very natural to happen because you start discounting that factor much before. Mm-hmm. And when the result comes, there is all the hope is over and the event is over, and it starts, the people start booking profits. So therefore, Vinayaki, you can trust the numbers being declared. They are not forged. They are under very strict audit and stock exchange guidelines.
राम नारायण कोहली साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत आपका राम नारायण जी.
हाँ जी, नमस्कार जी.
नमस्कार नमस्कार. सवाल पूछ लें प्लीज
सर. मेरे पास फिजिकल कुछ पड़े हैं तो वो डीमैट नहीं हो पा रहे थे, तो और दूसरा प्रश्न है कि मैं जो डीमैट में तो हैं लेकिन वो बिक नहीं रहे शेयर, मतलब लिस्टिंग में नहीं है.
अच्छा राम नारायण जी, पहले तो आपके दो सवाल हैं. पहले तो वो उनका डीमैट अभी हो सकता है. आपको किसी मैं समझता हूँ कि जो ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर, उनसे संपर्क करना चाहिए और वो आपके शेयर्स बिकवाने में, उसको डीमैट कराने में मदद करेंगे. थोड़ा सा समय लगता है उसमें, 8-10 दिन 15 दिन कई दफ़े लग जाते हैं. दूसरा, आप कह रहे हैं वो लिस्टेड नहीं है, तो ये तो एक अलग मसला हो गया. हो सकता है उस कंपनी में अब डीलिस्ट हो गए हो शेयर्स, या उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम इतनी नहीं है कि आपको दिखता है. तो इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप उसी प्रॉपर्टी ब्रोकर से इस बात को उठाएं, और अगर डीलिस्ट हो चुके हैं तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा, आप कंपनी के जो सेक्रेटरी रजिस्ट्रार्स होते हैं, आप उनसे संपर्क करें कि मेरे शेयर्स डीलिस्ट हो चुके हैं, क्या हम ये अब कंपनी हो. कई दफे बायबैक ऑफर निकाल देते हैं, तो हो सकता है कोई बायबैक ऑफर हो जो आपको ना पता लग पाया हो, तो आप उनसे संपर्क करें. और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका जो फंसा हुआ धन है, हमें अच्छा नहीं लगता मार्केट मंत्रा के जो लिसनर्स हैं उनका कभी नुकसान हो इस तरीके से. हमें खेद है इस बात का कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट डेड हुई लग रही है, पर एक दफे आप ये जानकारी हासिल करें, उसके बाद फिर हमें बताएं, कुछ सोच के और कुछ आपके लिए रास्ता निकालेंगे.
अगला सवाल लेते हैं शिवानी से, दिल्ली से जुड़ी हुई है सरब जी.
जी
शिवानी, क्या सवाल है आपका? या पूछ लें आप.
या सर, आई वांट टू नो दैट आई एम अ स्टूडेंट एंड वांट टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट. इज दिस टाइम राइट टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट एज द मार्केट इज कंपैरेटिवली लो एज वेल एज इलेक्शन इज नियर?
Well, my question to a student would be that, first of all, I'm sure there must be pocket money which she must have collected, Shivani, or are you planning to use your parents' corpus? Well, anyway, let me answer your question. So, Shivani, when you enter the stock market, you have to be very careful because you need to study the whole concept. I don't know if you're a student of commerce or you're a student of stock market. So I would suggest first you learn. Once you have learned the basics of stock market, then what we recommend, I would like to inform Sarabjit and Harsh also.
Yes.
What we recommend is, we recommend paper trading.
Right.
पेपर ट्रेडिंग इज, आप मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, मानने में तो करोड़ भी मान सकते हैं. सो यू अज्यूम दैट यू गॉट 10 लाख रुपीज, एंड देन मेक अ नोट इन योर नोटबुक एंड इन्वेस्ट. आज मैंने टुडे आई इन्वेस्टेड 1 लाख, देन आई इन्वेस्टेड अनदर 50,000, नाउ माई इन्वेस्टमेंट इज इन प्रॉफिट. सो डू दिस पेपर ट्रेडिंग फॉर अबाउट 2-3 months. वेन यू फाइंड योर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू अंडरस्टूड द निटी ग्रिटीज ऑफ द मार्केट, देर लॉट ऑफ निटी ग्रिटीज शिवानी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट श्योर इफ यू ऑलरेडी फिल्ड योर सेल्फ अप विद दोज फंडामेंटल्स. इफ यू हैव, then first do paper trading, then but make sure your parents might be upset if you end up losing money for them. We don't know how they're going to react. So if they are with you, but do paper trading, then go on to doing real money trading.
Next caller, KK Sinha from Faridabad. Sinha ji, apna sawal poochiye.
Haan ji, market team ko namaskar.
Namaskar
ji. Kohli sahab ko bhi namaskar.
Namaskar Sinha sahab.
Kohli sahab, zara ye bataye कि अगले 4-6 महीने में मार्केट का कैसा रहने का है, क्या हो सकता है इसकी डायरेक्शन, और कोई तीन सेक्टर बताएं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया सके।
जी सिन्हा साहब, पहला सवाल आपका बहुत ही कठिन है और मैं जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं तो ये सोचता हूँ काश मैं ज्योतिषी होता और कुछ ग्रहों की दशा निकाल के निकाल लेता। एनीवे ये तो रही हल्की फुल्की बात, पर सिन्हा साहब मार्केट इस साल थोड़ी सी मुझे वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, थोड़ी क्या काफी वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमारी आर्थिक ग्लोबल सिचुएशन है, दुनिया इस समय मात्र 2.7% की दर से बढ़ रही है, हमारी भी थोड़ी सी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, पिछले साल हम 8.2 पे थे, तो कहीं थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी सुस्ती सी दिखाई दे रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा हमें मंदी आ रही है, तो उसकी वजह से मार्केट, देखिए मार्केट अल्टीमेटली चलती है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स से, अगर आपके कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं तो वो मार्केट को दौड़ाते हैं, तो नजर रखिए सिन्हा साहब इस पे प्रॉफिट्स पे कंपनी, अगर आपको प्रॉफिट्स अच्छे दिखाई देते हैं तो मार्केट अल्टीमेटली कितनी भी बुरी खबरें आए मार्केट उस फंडामेंटल पे जाके स्टैटिक हो जाती है। तो मेरी सिन्हा साहब सलाह है कि आप लंबी अवधि के लिए लगाएं, आपने सेक्टर्स पूछे डिफेंस सेक्टर पे लगाएं, आप FMCG पे बेट कर सकते हैं और आप रिन्यूएबल एनर्जी पे बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे से तीन ही पूछे थे, मेरे पास तो 8-10 है, तो मैं तीन आपको टॉप के में जो आते हैं वो बता रहा हूं इसमें लगाएं, पर एक ध्यान रखें कि लंबी अवधि के लगाएं, छोटे वक्त के लिए ना लगाएं।
पंकज मिश्रा फ्रॉम नोएडा, सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
थैंक यू मैडम। तरह कोहली जी, मैं आपका विशेष मतलब आपके जो फाइनेंशियल एडवाइस है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप एकदम सटीक बहुत अच्छे से
शुक्रिया
सर। और हमारा सर क्वेश्चन दो है कि IPO के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये IPO क्या है और दूसरा है बिटकॉइन।
अच्छा।
बिटकॉइन के बारे में सर। थैंक यू सर।
IPO क्या होता है? IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। जब भी कोई कंपनी बाजार से पैसा उठाना चाहती है तो वो अपना शेयर इशू जब पहली बार निकालती है, क्योंकि इनिशियल नाम है तो उसको हम IPO कहते हैं, वो उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक बनता है, सेबी मर्चेंट बैंकर्स आते हैं, सेबी उसको अप्रूव करता है, फिर एक तारीख फिक्स होती है, फिर आपकी प्राइस बैंड फिक्स होता है कि कितने पे निकालना है, तो उसको हम IPO कहते हैं। तो आप जब मार्केट से आपका उसका टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट करना चाहती है, उस पर प्रीमियम कितना, ये सब प्लान बना के कंपनी जाती है, सेबी पे अप्रूवल डालती है, सेबी अप्रूव करती है और IPO आता है, लोग उस शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद वो लिस्ट हो जाता है। मैंने सारी की सारी इसकी जो जीवन कथा है आपको बहुत संक्षेप में समझाई, क्योंकि बहुत लंबा मैटर हो जाए। बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आता है, सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है, पर अभी भारत में इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं है, अगर अमान्य नहीं है तो मान्यता भी नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कि क्रिप्टो करेंसी से हमारे लिसनर्स थोड़ा सा दूर रहे, जब तक भारत सरकार इसको मान्यता नहीं देती है उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। चर्चा करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं समझता हूं चर्चा करने से कई दफे क्या होता है, हमारे श्रोता थोड़े से भावात्मक होकर उसमें अपना पैसा लगा देते हैं, तो इसलिए मैं सलाह दूंगा पंकज के थोड़ा सा भी उससे दूर रहे, मान्यता आएगी तब इसके बारे में दोबारा बात करेंगे।
बिल्कुल, कोई वॉच डॉग भी नहीं है और अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो आपको और छोर भी पता नहीं लगेगा कि आप कहां जाएं,
और खाली न्यूज फ्लो पे चलता है।
बिल्कुल,
इसके पीछे कोई फंडामेंटल, एक शेयर मार्केट में कंपनी होती है, उसके पीछे फैक्ट्री है, सामान बनता है, बैलेंस शीट आती है, ऑडिट होता है, इसका तो कोई अभी कोई माई बाप
प्लस से भी है, प्लस आप रोज चढ़ते उतरते शेयर को देख सकते हैं, और क्योंकि शेयरों की बात कर रहे हैं सर जी हम, तो बता दें कि इस सप्ताह भी लगातार तीसरा हफ्ता ऐसा रहा जबकि घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट हुई है। BSE और NSE दोनों 0.6% के आसपास गिरे हैं इस सप्ताह में, और सेंसेक्स जो फ्राइडे को बंद हुआ 79,190 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,092 पर रहा। अभी 80,000 से सेंसेक्स नीचे है, 25,000 से निफ्टी नीचे आ चुका है। शरद, क्या लग रहा है, अब तो ट्रंप साहब आ गए, कुछ फैसले भी हो गए, US फेड क्या करेगा अगले सप्ताह, ये भी बहुत कुछ क्लैरिटी है इसमें, कंपनियों के नतीजे भी आने लगे हैं,
जी, जी, जी।
मार्केट को कहां अब एस्टैब्लिश होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द बजट?
देखिए, ट्रंप साहब ने अभी ये बोला कि रेट कम होने चाहिए अगर मार्केट को, अमेरिकन मार्केट्स तो ठीक चल रहे हैं, वो तो अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास घूम रहे हैं, पर भारतीय मार्केट थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, और मुख्य कारण उसका है ये जो हमारे विदेशी मित्र हैं FIIs और FPIs, ये लगातार यहां से पैसा निकाल रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपका सीधी बात का जवाब दूं हर्ष में, तो जब तक ये बेचना बंद नहीं करेंगे तब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होगी। जितने हमारे देसी बॉयज जो है DIIs जो है वो खरीदते हैं, उधर उससे ज्यादा वो बेच के चले जाते हैं, तो एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, दो कदम पीछे चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इनकी जब ये सेलिंग कम होगी, वो लंबा डिस्कशन है, बॉन्ड यील्ड्स हैं, डॉलर इंडेक्स है, अमेरिका में रेट्स हैं, वो फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है, उसको हम चर्चा करते रहेंगे निरंतर। आई एम श्योर ये सवाल तो आपका बार बार आता रहेगा, तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
बिल्कुल, और अमित के पास चलना पड़ेगा मुंबई में। अमित, अपना सवाल जल्दी से पूछ लें।
जी सर, थैंक यू. आधा सवाल का मुझे जवाब मिल गया पहले आपने जो आंसर किया एक सर उसमें. तो मुझे पूछना था कि एक मेरे दोस्त ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो रोबोटिक्स के द्वारा करते हैं
जी.
तो ये इन्वेस्टमेंट कितना सेफ रहता है सर, क्योंकि आपकी तरफ से जेन्युइन सवाल आंसर मिलता है
जी.
क्योंकि वो क्रिप्टो में करते हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट करके यहाँ फिर उसके रिटर्न मिलते हैं, तो हो सके तो उसका जवाब प्लीज देंगे. थैंक यू.
देखिये फॉरेक्स मार्केट में भी अमित जब आप निवेश करते हैं पीछे सरबजीत और हर्ष बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने में आए जहाँ लोगों ने पैसे गवा दिए. बहुत ही फ्रॉडुलेंट तरीके से लोगों को फॉरेक्स में निवेश कराया गया कि हम आपको दो दिन के अंदर पैसा डबल हो जाएगा और देखिए आपको दिखाएंगे ट्रेडिंग हो रही है. तो उसमें बहुत सारा फर्जी काम भी चल रहा है. पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ठोक बजा के वेरीफाई करें. पर फॉरेक्स मार्केट बहुत स्पेकुलेटिव मार्केट है. फॉरेक्स में आप बहुत लंबा भारतीयों को लीगली आपको पता होगा कि आप डॉलर खरीद के नहीं रख सकते हैं आपको कानूनी तौर पर. तो पहले तो अमित आपको मैं ये बताऊं कि वो बिल्कुल भी गैर कानूनी है. मैंने क्रिप्टो के बारे में तो कहा कि मान्य भी नहीं है, मान्य भी नहीं. पर फॉरेक्स में किसी भी भारतीय को इस तरीके से डॉलर खरीद के आप नहीं रख सकते हैं. तो मैं अमित आप देखिए हम ये मार्केट मंत्रा जो है हम स्टॉक मार्केट्स के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत बातें करते हैं. तो उनमें आप आइए ना, उनमें आप निवेश करिए. ये जो बिल्कुल ओवरनाइट रिच बनने के जो मेथड्स होते हैं गेट रिच क्विकली जो होते हैं थोड़े से इनसे दूर रहना चाहिए. बहुत लोग इसमें हाथ जला चुके हैं, अपने पैसे अपने खून पसीने की कमाई गंवा चुके हैं. तो अमित आप इसकी लीगल पोजिशन समझिए और आप दूसरे सेक्टर्स में निवेश करिए जी.
योगेश हमारे अगले कॉलर होंगे, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं. योगेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका.
आपका शुक्रिया और सबको नमस्कार जी. मेरा सवाल, मेरे सर दो सवाल हैं. पहला सवाल ये है कि मार्केट में नतीजों के बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उसके बाद शेयर में उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये जो शेयर का भाव बदलता है इसके दो मुख्य कारण हमने नोटिस करे हैं. पहला है खरीद और बिक्री और दूसरा है उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है. तो कितना वेटेज होता है एक शेयर का भाव जब बढ़ता है, मान लीजिए उसको कंपनी या कोई इसको खरीदार खरीद नहीं रहे लेकिन वो कंपनी मुनाफे में मुनाफा कमाए जा रही है, तो ये प्राइस के चेंज में वेटेज कंपनी की ग्रोथ का, एक्चुअल ग्रोथ का और उसके मार्केट में जो उसका स्पेकुलेशन लोग करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है?
बहुत अच्छा सवाल है योगेश और बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये बात रहती है. ज्यादातर वेटेज योगेश लॉन्ग टर्म में तो उसी का रहता है जो दो बातें आपने कही कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी और कंपनी के शेयर्स का वॉल्यूम कितना है. पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए योगेश कि इस शेयर्स में बहुत सारे शेयर्स जो खासकर निफ्टी 50 में है या मैं यूं कहूं जो शेयर्स F&O के अंदर होते हैं उसमें ना स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी जुड़ जाता है. मतलब जब उस पर जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आप जब डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो डेरिवेटिव एलिमेंट जुड़ने से कई दफे जो आपके मन में जहां से सवाल आया वो बिल्कुल सही है कि वो कई दफे रिजल्ट्स पे डिपेंड नहीं करता है. मैंने अभी बताया कि रिजल्ट अच्छा आया और शेयर गिरने लग गया, तो वो थोड़ा सा वो उसको डाइल्यूट कर देता है जो दो फैक्टर्स आपने बताए. पर लॉन्ग टर्म में योगेश ये सच है कि जो दो चीजें आपने बताई, आपने आधा तो प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया कि रिजल्ट्स और कितनी सेल परचेज उसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग हो रही है इस पे निर्भर करता है. शॉर्ट टर्म में थोड़े से सेंटिमेंटल इमोशनल न्यूज फ्लो ये सब फैक्टर्स भी आ जाते हैं और स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी बीच में आ जाता है, इसलिए आपको शेयर प्राइस कई दफे उसके रिजल्ट से दाएं बाएं होती हुई दिखाई देती है शॉर्ट टर्म में जी.
शुभ्रोतो फ्रॉम बेंगलुरु, शुभ्रोतो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
हेलो, गुड इवनिंग टू मास्टर मंत्र टीम.
I am an
intraday trader. I have bought Bank Nifty. It will be expire on this Thursday only, upcoming Thursday.
Yeah.
So I have bought call European.
Yeah.
So I have expected that market will go up, and now I am in loss, 4,500 loss.
Yeah.
So what would happen on Monday?
बहुत brief में okay.
Shubhroto, I'll be very quick. Almost 85-90% people lose money in speculative trading. This is a SEBI data. So I would suggest you should keep away from intraday trading and try and become a long-term investor. We do not give specific indices or stock-related advice here. So I'll have to hold back that advice, but I'll like to only advise you that keep away from speculative.
बिल्कुल. आज के लिए बस इतना ही. सभी श्रोता का बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमसे जुड़े, अपने सवाल पूछे और खास तौर पर शरद कोहली आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए.
माय प्लेजर, थैंक यू सो मच.
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर अंग्रेजी में.
यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स टॉक्स विद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, सेज इंडिया एंड इंडोनेशिया टू एनहांस कोऑपरेशन इन साइबर सेफ्टी, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड डी रेडिकलाइजेशन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डावोस कॉल्स फॉर इंक्रीज्ड कोऑपरेशन इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटी एंड डोमेस्टिक मार्केट्स रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट significant downturn for the third consecutive week.
आज के लिए बस इतना ही. कल शाम 6:30 बजे म्यूचुअल फंड के विशेष अंक के साथ मार्केट मंत्रा में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
नमस्कार. Oh,